आंखें भगवान विष्णु शिव का ध्यान करते हैं और शिव विष्णु का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव विष्णु नहीं है और विष्णु शिव नहीं है। जो हमारे पास है उसका ध्यान करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अधीन ही है। जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, एक तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर के कोई काम होता है। जैसे रस्सी बनाते हैं ना, रस्सी तो रस्सी में तीनों गुण होते हैं, एक दो तीन, और तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। उसी तरह से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों मिलता है तो कार्य होता है। लोक भी आप देख लीजिए, तीन है, पाताल लोक और ये धरती लोक और स्वर्ग लोक। तो पाताल में दैत्यों का वास, स्वर्ग लोक में देवता और बीच में ये मनुष्य। पूछा कि महाराज ये बीच में मनुष्य क्यों रहते हैं? कहा कि तुम चाहो तो देवता बन जाओ और चाहो तो नीचे रसातल में चले जाओ। यदि धर्म करोगे तो ऊर्ध्व गति होगी, देवता बन जाओगे, और अधर्म करोगे तो नीचे जाओगे, पाताल में चले जाओगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर है, तुमको बीच में रखा गया है कि तुम देवता बनते हो कि आप दानव का कर्म करते हो। कहते हैं राम जी भगवान शिव से कि हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं कि आप जरा दिति और अदिति के विषय में बतलाएं, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कौन थे उनके विषय में बतलाएं। भगवान शिव ने कहा कि कश्यप जी की दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था दिति और दूसरे पत्नी का नाम था अदिति। तो दिति से दो पुत्रों का जन्म हुआ जो असुर थे, बड़े बलवान थे, पराक्रमी थे। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकशिपु। दोनों ही दुराधर्ष थे, उनको जिस युद्ध में विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता था उनसे। फिर कश्यप जी की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था अदिति, उन अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और देवताओं के स्वामी जो शक्र भगवान इंद्र हैं उनको बनाया गया। तो इंद्र को दे दिया गया कि भाई आप स्वर्ग लोक के अधिष्ठाता बन जाओ, देवताओं के मालिक बन जाओ। और हिरण्याक्ष जो था उसे कह दिया गया कि आप पाताल लोक में जाओ और पाताल लोक में आप दैत्यों के स्वामी बन करके राज करो। सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहने लगे, सब अपना अपना कर्तव्य करने लगे, लेकिन अपने से भला संतोष किसको है? सबको पड़ोसी का धन अच्छा लगता है, सबको पड़ोसी की स्त्री अच्छी लगती है, सबको पड़ोसी की वस्तुएं अच्छी लगती है, अपने वस्तु से किसी को संतोष है नहीं। दैत्य हिरण्याक्ष इतस्ततः भ्रमण करते हुए अपने पराक्रम के बल पर स्वर्ग पहुंचता है, देखता है कि यहाँ देवता लोग इतने सुख भोग रहे हैं, उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है। वो सोचता है कि ब्रह्मा जी ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, हमें पाताल में गड्ढे में भेज दिया है जहाँ जल जल का जल भरा रहता है, इन लोगों को स्वर्ग का लोक दिया है, इस स्वर्ग लोक में ये इतने सुखी रहते हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं। ईर्ष्या से उसका शरीर जलने लगता है, वह अपनी दैत्यों की सेना लेकर और स्वर्ग पर आक्रमण करता है। स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त कर देता है, देवता भी परास्त होकर के इतस्ततः भ्रमण करने लगते हैं, क्योंकि जो नीचे है वह ऊपर की तरफ बढ़ता है और जो ऊपर है उसे नीचे की तरफ गिरने का भय बना रहता है। इस चटाई पर बैठने वाला जो जमीन पर जमींदार है वो गिर के कहाँ जाएगा, लेकिन जो ऊपर बैठा चौकीदार है वह चौकी का खंभा टूटे नीचे का तो नीचे गिर सकता है। इसलिए ऊपर उठे हुए को भय है, नीचे बैठे हुए को कोई भय नहीं है जो धरती पकड़ करके बैठा हुआ है। तो दैत्यों को तो ये हुआ कि थोड़ा हम इधर उधर भी उड़ करके देखें क्या है, देखा तो उसे लोभ हुआ और उसने इंद्रादि देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया। और जो यज्ञ का भाग था, यज्ञ होता है देवताओं की वृद्धि के लिए, उसके जगह पे दैत्य बैठ गए और दैत्य लोगों यज्ञ भाग ग्रहण कर लिए। जितनी आहूतियां आहार विहार सब पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया और देवता कमजोर होकर के भूखे प्यासे भ्रमण करने लगे इतः ततः। देवताओं ने कहा कि हम लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ही हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के ही पास चलते हैं। फिर ब्रह्मा जी के पास देवगण जाते हैं, जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप वरदान दे देते हैं और दैत्य लोग हमारा पलड़ा साफ कर देते हैं। पितामह ने कहा भाई हमारा काम ही यही है, हम सिर्फ तुम्हारे पितामह नहीं है, हम सबके पितामह हैं। जो ही तपस्या करेगा जो ही सत्कार्य करेगा उसी को हम वरदान दे देते हैं। देवता वो के बड़े निवेदन करने पर पितामह ब्रह्मा जी विष्णु जी भगवान के पास जाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। बार बार ये होता है कि ये विष्णु के पास ही क्यों जाते हैं, तो कारण है कि विष्णु भगवान पालक हैं, पालन करने का दायित्व उनके ऊपर है। माता जन्म दे देती है, जन्म दे करके घर में देखभाल कर देगी, लेकिन पिता का काम है धन ला करके देना, पालन का कार्य पिता करता है धन प्रदान करके। वैसे भगवान विष्णु का काम ही है, वो पालन शक्ति के अधिष्ठाता देव हैं। इसलिए उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में हम हिरण्याक्ष के लिए व्यवस्था कर देंगे। और भगवान कृष्ण वर्ण का शरीर धारण किया जिसमें आधा शरीर उनका मनुष्य का होता है और ऊपर का भाग वराह का होता है। ऐसे वराह स्वरूप भगवान का प्राकट्य होता है। प्रेम से बोलो श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान जब आ रहे हैं ऐसा लगता है कि मेघ के अंदर बिजली चमक रही हो, ऐसा उनका काला शरीर और पीले उनके वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। हाथ में शंख और चक्र दोनों ही लिए हुए हैं। हिरण्याक्ष को मारने के लिए चल दे रहे हैं और अपना शंख बजा रहे हैं। शंख बजाते ही सारा लोक सोचता है अब क्या होने वाला है, देवता तो युद्ध देखने के लिए तत्पर हैं। भगवान वराह रूप धारण करके विचित्र रूप में जिसका संपूर्ण शरीर मानव का हो और सिर वराह का हो, भुंड का हो, शुकर का हो, ऐसा विचित्र रूप हिरण्याक्ष ने देखा नहीं, उसे आश्चर्य हुआ, कह रहा ये हमारी सभा में कौन आ गया, ये विचित्रानंद विचित्र रूप धारण करके, जिसका मुंह बुंड का है, शरीर मनुष्य का है, काला कलूटा, लेकिन तेज से ऐसे चमक रहा है जैसे मानो आकाश में बिजली चमकती हो, इस तरह का स्वरूप भगवान का, वह देखकर दंग रह जाता है। और विविध अपने जो सहयोगी दैत्य है उनसे कहता है इसे बंदी बना लो, इसे मारो। भगवान वाराह के पास सब जाते तो हैं, लेकिन उनके हूंफ से ही सब जल जाते हैं, कोई उनको स्पर्श नहीं कर पाता है। जितनी उसकी दैत्य सेना थी जो उसे बंदी बनाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि विचित्र वीर है, विचित्र तरह का है, इसे बंदी बनाओगे तो हम पिंजरे में बांध करके रखेंगे, हमारे दैत्य लोग देख करके खुशी होंगे कैसा प्राणी आया। लेकिन किसी की चलती नहीं भगवान के आगे, सबका अस्त्र शस्त्र प्रभु ने विफल कर दिया, सबको मार गिराया। इसके बाद स्वयं ही हिरण्याक्ष अपने धनुष उठाता है और भगवान के तरफ छोड़ता है धनुष से बाण।